समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विथ मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीअफर्म्स इंडियाज कमिटमेंट टू अचीव ग्रीन डेवलपमेंट, इनॉग्रेट्स रीइन्वेस्ट 2024 मीट एट गांधीनगर इन गुजरात।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार आज समाप्त होगा।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट 8th इंडिया वाटर वीक 2024 टुमारो इन न्यू दिल्ली, 40 कंट्रीज टू पार्टिसिपेट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड।
प्रमुख शेयर सूचकांक शुरुआती कारोबार में अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचे।
And in hockey, the semi-final match between India and South Korea in Asian Champions Trophy 2024 in Hulunbuir, China is underway. And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Well, today is the International Day for the Preservation of the Ozone Layer. Life on Earth would not be possible without sunlight, but the energy emanating from the sun would be too much for life on Earth to thrive were it not for the ozone layer. Most ozone is found high in the atmosphere, between 10 and 40 kilometers above the Earth's surface. And this region, Akarshita, is known as the stratosphere, and it contains approximately 90% of all ozone in the atmosphere. This stratospheric layer shields the Earth from most of the sun's harmful ultraviolet radiation. And sunlight makes life possible, but the ozone layer makes life as we know it possible. And the day is dedicated to raising awareness about the importance of the ozone layer in protecting life on Earth. It has significantly depleted in recent years, and annually this day is commemorated to educate people more about how this is a concern. It also spreads awareness about the steps that have been taken to preserve the ozone layer.
अभिषेक, ओजोन ऐसी गैस है जो भले ही बहुत कम मात्रा में पाई जाती हो, लेकिन पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ओजोन गैस की एक परत जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है, हमें सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट किरणों की रेडिएशन से बचाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए बनाई गई थी। इसे 1987 में अपनाया गया था। इस संधि का लक्ष्य ओजोन क्षीणकारी रसायनों को कम करना और ओजोन परत का पुनर्निर्माण करना है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन घटाने वाले पदार्थों के निर्माण और खपत को चरणबद्ध करना था, लेकिन इन यौगिकों के कुछ विकल्प, जिन्हें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के रूप में जाना जाता है, अभी भी हानिकारक माने जाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी पक्ष 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा में अपनी 28वीं बैठक में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे।
Yes, Akarshita, and this year the theme of the day is Montreal Protocol, Advancing Climate Action, and the aim is not only to celebrate the accomplishments but also look forward to deeper and faster action under the Montreal Protocol in the future. And effectively implementing the Montreal Protocol is crucial and deeply intertwined with the broader efforts to combat climate change. and India is a party to the Montreal Protocol since June 1992, has been successfully implementing the Montreal Protocol and its ozone-depleting substances phase-out projects and activities in line with the phase-out schedule of the protocol. And India has passed out the chlorofluorocarbons, carbon tetrachloride, halons, methyl bromide and methyl chloroform for control uses as on 1st of January 2010 in line with the Montreal Protocol phase-out schedule. And currently hydrochlorofluorocarbons, HCFCs, have been phased out as per the accelerated schedule of the Montreal Protocol. Yes, Akarshita.
ओजोन परत पृथ्वी के वातावरण में स्थित है और सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है। इसके बिना ये किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंच सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जैसे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकते हैं। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत को बचाने के लिए हमें ओजोन क्षीणकारी पदार्थों का उपयोग कम करना चाहिए, है ना अभिषेक, जैसे सीएफसीज हैं और हैलोन है, या फिर हमें ऐसा करना चाहिए कि ऊर्जा की जो बचत करने वाले उत्पाद हैं उनका प्रयोग करना चाहिए और रिसाइकलिंग जो 3 R's हमने अभी तक पढ़े हैं, ये रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, उसकी आदत डालनी चाहिए और पर्यावरणीय नीतियों का पालन करें और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाएं और सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों से हम ओजोन परत की रक्षा कर सकते हैं। और आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना जरूरी है और ये दिन हमें भावी पीढ़ियों के लिए ओजोन लेयर को सुरक्षित रखने के लिए जलवायु से जुड़े कदम उठाने को प्रेरित करता है। तो आज ही ये संकल्प लें कि आप ऐसे उत्पादों का प्रयोग करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का, सीएफसीज का जो है उत्सर्जन ना हो, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें, है ना अभिषेक?
यस एब्सोल्युटली, एंड लेट्स ऑल टेक अ प्लेज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। सो विद दैट वी कंक्लूड अ डिस्कशन ऑन द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर।
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
यस, एंड इन जम्मू एंड कश्मीर द मच फर्वर एंड पीपल इज सीन अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शंस एज द पोल प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन 3 phases ऑन सितंबर 18th, सितंबर 25th एंड अक्टूबर 1st, एंड वोट्स शैल बी काउंटेड ऑन द 8th ऑफ अक्टूबर। And today being the last day for the election campaign for the phase 1, candidates are busy in carrying forward the campaign in their respective areas. Among 16 constituencies in South Kashmir, Kulgam is one among the key constituencies. We have more from a correspondent.
With only 2 days left for the first phase of assembly election scheduled on September 18th, election campaigning by candidates of various political parties for 24 assembly constituencies in Jammu and Kashmir is in full swing. This time around 5,66,000 youth voters are eligible for casting their vote, the cumulative number of voters being about 23,27,000 in the Union Territory. The 16 assembly seats in Kashmir are spread in Anantnag, Kulgam, Shopian and Pulwama districts. Star campaigners of various political parties are busy in holding rallies and road shows in poll-bound areas, leaving no stone unturned to woo the voters. As Kulgam happens to be a key constituency in South Kashmir, a total of 1,17,322 voters will decide the fate of 10 contesting candidates, among which 58,477 are male and 58,845 are female voters. The main candidates in the fray include CPIM leader and 4-time MLA Muhammad Yusuf Tarigami, who is the National Conference Congress Alliance candidate for this constituency. The other candidates are former Rajya Sabha member Nazir Ahmed Lawe of People's Conference, Muhammad Amin Dara of People's Democratic Party, and Jamaat-e-Islami-backed independent candidate Sayar Ahmed Reshi. Election Commission of India has set up 134 polling stations with assured minimum facilities in the constituency. Voters are very enthusiastic to cast their vote to elect their favorite representative for the assembly. All necessary preparations have been finalized and adequate security arrangements have been put in place to ensure hassle-free conduct of elections. This is Sunil Kohl for Akashwani News from Srinagar.
श्री विजयपुरम में आज से अंडमान लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के लिए 5 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने आज अंडमान लोक निर्माण विभाग के सम्मेलन कक्ष में इसका उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने अभियंताओं से नई तकनीक का ज्ञान हासिल करने और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पूरा करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को सहूलत मिले। श्री केशव चंद्र ने कहा कि किसी भी कार्य निष्पादन में गुणवत्ता को बनाए रखना अति आवश्यक है और इसके साथ समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार प्रशासन ने सड़कों को टिकाऊ बनाने के लिए सीमेंट युक्त कंक्रीट सड़क बनाने का निर्णय लिया है। पायलट परियोजना के तहत दक्षिण अंडमान के कुछ क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की जाएगी। मुख्य सचिव ने वर्तमान पद्धति में बदलाव करने और नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर भी बल दिया। अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता प्रीजीत रेख ने बताया कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय विभाग और कॉलेजों के अध्ययनरत अभियंताओं के अलावा सड़क निर्माण से जुड़े हितधारक भी भाग ले रहे हैं। ऑनलाइन लिंक भी उपलब्ध करवाई गई है जो आगे की रोड मैप तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। परिक्रमा के लिए एस मुरली के साथ श्री विजयपुरम से मैं राकेश चंद्रलाल।
As Keralites celebrated the biggest cultural festival Onam, the state witnessed record bookings for Onasadhya compared to previous years, showing a major shift in family structure and changing times. We have more from a correspondent.
Onasadhya is a traditional meal during the eve of Onam, exclusively made with variety of vegetarian side dishes along with payasam. A complete sadhya includes a wide variety of dishes like banana, papad, dal, ghee, rice, sambar, avial, kootukari, pachadi, kichadi, paripukari and two types of payasam. This lavish meal is an integral part of Onam and is making by the family members is part of the rich cultural tradition. This year, record bookings of Onasadhya was witnessed in almost all areas of the state. Till the late 90s, when the joint family system was predominantly residing in most part of the state, the Onam festival was celebrated with its original fervor. However, as group family system slowly started disappearing and most nuclear families started residing in apartments and flats, Onasadhya was readily available in catering units and hotels. As times changed, scenarios and life and culture has also changed drastically. The festival, including Onam, has found new ways of expression and the market is also responding to its demand. As change is inevitable, festival like Onam is also being celebrated in new ways, keeping the traditional alive. Mayusha for Parikrama from Thiruvananthapuram.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On this day in 1904, revolutionary freedom fighter Mahavir Singh Rathore was born in Eta district of Uttar Pradesh. He was first drawn to the freedom struggle when he was studying in class 6. Singh was a member of Naujawan Bharat Sabha. He was the one who helped in the escape of Bhagat Singh, Batukeshwar Dutt and Durga Devi from Mozang House in Lahore. He was arrested as part of the second Lahore conspiracy case.
Mahavir Singh Rathore took part in the hunger strike of 1933 to protest against the treatment of prisoners. He died during the hunger strike in cellular jail of the Andaman and Nicobar Islands. His father, Devi Singh, had once said, "Knowing that you are fighting for the country proves that we have not accepted slavery from our hearts. Now that you are on the path to freedom, don't look back and never betray your associates."
September 16th is also the death anniversary of Tarukeshwar Sengupta. He took part in the Chittagong Armory raid. In the mid-1930s, revolutionary activity in Bengal was at its peak. From the Chittagong Armory raid to the invasion of the Writers' Building, the British Raj was feeling the heat. One of the most daredevil acts organized in the history of the Indian revolutionary movement was the Chittagong Armory raid. On 18th April 1930, a band of 63 people, most of them teenagers, led by Shurjo Sen, raided the police and auxiliary forces armory in the Chittagong district and liberated it from British control, unfurling the Indian flag. Though the Chittagong revolutionaries failed in their immediate objective, it helped galvanizing youngsters.
The massive police crackdown that followed resulted in many being detained. Some of them being detained at Hejali Detention Camp near Kharagpur. The Hejali Detention Camp was a majestic double-storied structure with a tower in the center. The entire campus was secured by double gates and a 10-feet high wall and barbed wire fencing. Even as escape was considered impossible, 3 did manage to run away. This made the authorities tighten the security.
On September 16, 1931, a group of guards opened fire and cracked the skulls of some prisoners with their rifle butts. Freedom fighters Tarokeshwar Sengupta and Santosh Mitra were shot dead in the tumult. The inmates were shocked, and one of the detainees, Himanshu Bosu, made a pencil sketch of both the victims and sent it to the editor of Anandabajar Patrika. After the report came out, Jyotindra Mohan Sengupta and Netaji Subhash Chandra Bose went to Hijli to take over the dead bodies. They organized a big procession at Calcutta on their way to the crematorium. Disappointed with the deaths, poet laureate Rabindranath Tagore composed the poem Proshno.
Bhagavan, tumi juge juge dut patayacho bare bare daya hil samsare. Tara bole gelo khoma karo shabe. Bole gelo bhalobashu. Antar hote biddesh besh nasho. Boroniyo tara, shoroniyo tara. তবুও বাহির তাদের আজ দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কার.
Do you know the country's first IIT, that is IIT Kharagpur, is built on this detention camp? In 1950, one of the top engineering colleges of India started functioning from 5 Esplanade East in Kolkata. But later it was decided that they needed a bigger and peaceful location. So they chose a complex at Hijli that was about 150 kilometers far from Kolkata.
On September 16, 1932, in his cell at Yerwada Jail in Pune, Mahatma Gandhi began a hunger strike in protest of the British government's decision to separate India's electoral system by caste. He was in jail after being arrested for the civil disobedience movement he launched after his return from England, where he attended the Round Table Conference. In September 1932, Gandhi announced he was beginning a fast unto death in order to protest the British move to have separate electorate for the downtrodden. Gandhi believed this would permanently and unfairly divide India's society.
In business news today, India's equity benchmark indices rallied to record high, with the BSE mid-cap index ending on a flat note while small-cap index was up 0.3%. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, surged 98 points or 0.12% at 82,988, and the NSE Nifty was up 27 points at 25,383. And now on to some sports news.
ब्यूदापेस्ट में 45वीं शतरंज ओलंपियाड में कल ओपन वर्ग में भारत की पुरुष टीम ने अजरबैजान को 3-1 से हरा दिया। महिला टीम ने पांचवें राउंड में कजाकिस्तान को हराया। शतरंज ओलंपियाड में अभी 6 राउंड बाकी हैं।
Yes, and in the Asian Champions Trophy 2024 semi-final hockey match between India and South Korea is underway in Hulunbuir, China. India is leading 3-1 in the match, which started at 3:30 p.m. IST. Uttam Singh hit the first goal and Harmanpreet scored the second. India is the only unbeaten team in the tournament, having defeated China 3-0, Japan 5-1, Malaysia 8-1, Korea 3-1 and Pakistan 2-1. The reigning Asian Games gold medalist is upbeat ahead of the Korea clash. And in the first semi-final of the trophy, China defeated Pakistan 2-0 in the shootout. They drew 1-1 in regular time.
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी है आज पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। आज केसरबाई केरकर की पुण्यतिथि है। वे भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी। वे जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद अलादिया खां की शिष्या थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही केसरबाई केरकर ने संगीत की शिक्षा लेना और गाना शुरू कर दिया था। उनका गीत जिसका शीर्षक है जात कहां हो को अंतरिक्ष यान वाइजर 1 और वाइजर 2 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। केसरबाई केरकर को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनका ये संगीत।
जात कहां हो आजे अकेली जाने।
M.S. Subbulakshmi was born on this day in 1916. She was an Indian Carnatic singer. She was the first musician ever to be awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, and the first Indian musician to receive the Raymond Magsaysay Award in 1974, and the first Indian to perform at the United Nations General Assembly in 1966. Let's listen in to her rendition of the Ganesha Pancharatnam.
उदाकरात्म मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतं सतं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विना।
उन्होंने 1945 में भक्त मीरा नामक फिल्म में बेहतरीन भूमिका अदा की। उन्होंने मीरा के भजन को अपने सुरों में पिरोया जो आज तक लोगों द्वारा सुने जाते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संगीत की रानी तो वहीं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी की संज्ञा दी। आइए सुनते हैं उनका गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए।
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ा पराई जाने रे पर दुखे पकार करे तो ये मन अभिमान लाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ा पराई जाने रे।
Yes, and Prasoon Joshi was born on this day in 1971. He is an Indian poet, writer, lyricist, screenwriter, communication specialist and marketer. He is the CEO of the McCann World Group India and the chairman of APSC Asia Pacific, a subsidiary of the global marketing firm McCann Erickson. He was appointed as the chairperson of the Central Board of Film Certification on 11th August 2017.
जी हाँ, इन व्यावसायिक गतिविधियों के साथ साथ वे संवेदनशील लेखक, बॉलीवुड में गीत और गजलों की रचयिताओं में उनका नाम शीर्ष पर है और सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर के गाने माँ के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ।
डॉर्मेटरी में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। कम ऑन।
तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में
Prasoon has received the Filmfare Best Lyricist Award 3 times in 2007 and 2008 and again in 2014 for the Hindi movie Bhag Milka Bhag. He has also received the National Film Award for the Best Lyrics 2 times for his work in Tare Zameen Par 2007, the song of which is playing in the background, and Chittagong 2013. He was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2015 for his contributions towards the field of arts, literature and advertising.
अरे अभी तक ऐसे बैठे हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो। कम ऑन।
गौतम Rajadhyaksh was born on this day in 1950. He was one of India's leading fashion photographers and was based in Mumbai, India. He was one of India's best-known celebrity portraits, having photographed almost all the icons of the Indian film industry. Having completed a diploma in advertising and public relations, Rajadhyaksh joined the photo services department of the advertising agency Lintas India Limited in 1974. He eventually became the head of his department. During his 15-year stint, he participated in the creation of milestone ad campaigns while pursuing his childhood passion for photography. His first encounter with fashion photography happened in 1980, while he was still working for the Lintas as a copywriter. Shobha Day, his cousin, invited him to write for a magazine, Celebrity, Soon after started shooting photographs for his articles. This got him attention and soon acclaim as a glamour photographer. And before long, he started working for other magazines as well, including the Illustrated Weekly of India and film magazines like Stardust, Cine Blitz and Filmfare. In 1997, he released the coffee table book titled Faces, which contained profiles of 45 film personalities. In 1992, he wrote his first screenplay for the film Bekhudi, and which launched actress Kajol and careers, and his second and Anjaam, and presented Madhuri Dixit with a challenging role. In 2000, he held his first ever photo exhibition in Pune. And moving on, Nicholas Jerry Jonas was born on this day in 1992. He's an American singer, songwriter and actor. Jonas began acting on the Broadway at the age of 7 and released his debut single in 2002. This caught the attention of Columbia Records, where Jonas formed a band with his older brothers Kevin and Joe, known as the Jonas Brothers. The group released their debut studio album, It's About Time, through the Columbia label in 2006. Let's listen in to his hit track, Leave Before You Love Me, and it's from his album, Plant Tunes.
I see you calling. I didn't want to leave you like that. It's 5 in the morning, here, 100 on the dash. 'Cause my wheels are rolling.
Mark Antonio Muniz was born on this day in 1968, known professionally as Mark Anthony. He's an American singer and songwriter. He's a top-selling salsa artist of all time, a 4-time Grammy Award, 8-time Latin Grammy Award, and 29-time Lo Nuestro Awards winner, the most of by any male. He has sold more than 12 million albums worldwide. Let's listen into his hit track, Vivir Mi Vida.
आज श्यामलाल गुप्त पार्षद की जयंती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी एवं अध्यापक थे। श्यामलाल गुप्त पार्षद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्प्रेरक झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे।
Riley B. King was born on this day in 1925, known professionally as B.B. King. He was an American blues guitarist, singer, songwriter and record producer. He introduced a sophisticated style of soloing based on fluid string bending, shimmering, vibrato and staccato picking that influenced many later blues electric guitar players. All Music recognized King as the single most important electric guitarist of the last half of the 20th century. Let's listen in to his hit track, Paying the Cost to Be the Boss.
You act like you don't want to listen when I'm talking to you. You think you ought to do, baby, anything you want to do. You must be crazy, baby. You don't gotta be.
आज हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार राम लक्ष्मण की जयंती है। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं में किए गए अपने काम के लिए राम लक्ष्मण विशेष तौर पर जाने जाते हैं। संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम विजय पाटिल था। उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। हिंदी फिल्मों के अलावा राम लक्ष्मण ने मराठी और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और उनकी प्रमुख फिल्में थीं पत्थर के फूल, 100 डेज, प्रेम शक्ति, मेघा आदि। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।
तुम शर्माई हुई सी लगती हो, कुछ घबराई हुई सी, ढलका हुआ सा आंचल क्यों है।